نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى النجوم والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وسلم أما بعد دنیا میں جو بیماری ہیں جسمانی بیماری کی میں عرض کر رہا ہوں تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کسی معالج کے پاس انسان جاتا ہے، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، اسٹریٹ اوے ایک دم دوائی نہیں دیتا، بلکہ وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے، زکام ہے یا کیا ہے، بس یہ دعا نہیں دے گا وہ جب تک کہ اس کی مرض کی مکمل طور پر تشخیص نہ کی جائے، پھر اس کے مطابق وہ دوا دیتا ہے تاکہ صحیح علاج ہو۔ ایسے ہوتا ہے نا معاملہ، اس کے لیے بھی کافی پروسیس ہیں بھائی، کس طریقے سے اس بیماری کو دیکھا جائے۔ تو پہلے جونیئر ڈاکٹر دیکھتے ہیں، پھر سینئر ڈاکٹر دیکھتے ہیں، پھر کنسلٹنٹ دیکھتے ہیں، پروفیسر دیکھتے ہیں، تو جیسے جیسے بڑا ڈاکٹر دیکھتا رہے گا اتنے ہی زیادہ انسان کو کانفیڈنس اور اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ صحیح بات کر رہا ہے، اس نے صحیح تشخیص کی ہے مرض کی، اور پھر اس کے ساتھ جا کے اس مرض کا علاج کیا جاتا ہے، اللہ فضل فرما دیتا ہے، شفا ہوتی ہے یا پھر جیسے بھی ہو، لیکن طریقہ علاج کا ہمارے یہاں سے ہی۔ تو بھائی دیکھیں، اسی طرح ہم لوگ جو عام، کوئی انسان بھی نہیں بچا ہوگا، غریب بھی، امیر بھی، چھوٹا بھی، بوڑھا بھی، کسی نہ کسی پریشانی میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، اور اکثر لوگوں کی شکایت بھی ہے ابھی گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، بچے نافرمان ہیں، یہ عام ایک ہمارے یہاں جس کو مصیبت بھی کہہ سکتے ہیں، پریشانی بھی ہیں، تو اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے۔ ہم خود تو کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، کوئی کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا یہ کام رکا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دکان نہیں چلتی، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کچھ ہے ایسا نہیں معاشرے میں۔ پھر اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، عام لوگ آ جاتے ہیں، جنات والے آ جاتے ہیں، پھر غلط قسم کے عملیات شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اعتقاد ختم کرتے ہیں، کوئی جن سے صحیح ہوتا ہے، کوئی جن سے صحیح نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں وہ بابا بڑا اچھا ہے، جس کے پاس جائیں وہاں کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے پہ اعتقاد بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جو شرک سے بڑھتا ہے انسان، پھر اللہ سے ناراضگی مول لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی انسان یہ کام کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اس کا بھی کنسلٹنٹ ہے، جو سب سے بڑا کنسلٹنٹ ہے، جس نے اس کے علاج کیا ہے، تشخیص کی ہے سب سے پہلے کہ کیوں آتی ہے مصیبت، کی وجہ کیا ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، ہمارے معاملات کیوں غلط ہیں۔ تو اتنا بڑا کنسلٹنٹ ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کا علاج بھی صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر بیماری رہ سکتی ہے، پریشانی رہ سکتی ہے، مصیبت رہ سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا کنسلٹنٹ ہے، وہ کون ہے؟ ہمارا رب حقیقی ہے، अल्लाह सुभान अल्लाह ने उसके इलाज तशखीश कर दी समर्थ की, कितनी बड़ी तशखीश फरमाई है, तशखीश भी की, अपनी सच्ची किताब में उसको मुस्बत भी कर दिया, लिख भी दिया ताकि लोग पढ़ें और समझें, ताकि इनकी परेशानी को ख़त्म हो जाए। तब बदकिस्मती तो हमारी है कि भाई क्यों परेशानी है, तो इतनी बड़ी चीज़ तशखीश हो गई अल्लाह की तरफ से मौजूद भी है, तो कोई सेंस नहीं बनता आदमी करके वो कहे जी मैं तो बहुत सख्त परेशान हूँ, ये बरकतें नहीं हैं, फला चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया है कि भाई वजह यह है तुम्हारी बीमारियों की, और माँ असाबा को भी मुसीबत थोबी माँ कसब तहरी को या फोन कसीर, यह आया था ना कुरान में सूरह शूर, तशखीश कर दी पाक कि जितनी भी तुम्हारी परेशानी है, मुसीबतें हैं, बेबरकतियाँ हैं, जो कुछ है तुम्हारे माहौल के अंदर, उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया मामा असाबा मुसीबत, कि वजह उसकी ये है कि भाई हर मुसीबत परेशानी फिक्र बेबरकती की वजह यह है कि खुद तुम अपने हाथों से जो अमल करते हो उसका नतीजा ये निकलता है, खुद ही तुम जो मेरी नाफरमानी करते हो उस नाफरमानी का नतीजा ये है कि तुम पे मुसीबतें आने शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ आने शुरू हो जाती हैं, तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं और तुम्हें समझ नहीं आती। तो अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी तशखीश इसकी फरमा दी, माँ साहबा को भी मुसीबत, तो इतनी बड़ी चीज़ हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई है, और हम इस पर सोचें सारा मामला जो बनता है किस चीज़ से, अल्लाह की नाफरमानी पर, बड़ा आसान तरीका है, नाफरमानी से इंसान बच जाए तो मुसीबतों से बच जाएगा, अल्लाह की नाफरमानी इंसान छोड़ दे, जिस चीज़ से अल्लाह पाक ने मना किया उसको छोड़ दे, जिसको हम गुनाह भी कहते हैं, तो ये जो मुसीबतें टपक रही हैं हमारे पे ये सारे ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बहुत आसान तरीक़ा है, अल्लाह ताला ने कहा है। और फिर ये कि भाई इसमें एक और बात आपको समझा दूँ, लोग फिर बाज ये भी कहते हैं कि जी हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो तस्बीहात भी करते हैं, हम तो कुरान की तलावत भी करते हैं, ऐसे भी हैं ना लोग हज भी कर लेते हैं और जिक्र भी करते हैं, फिर क्यों परेशानी आती है, मुसीबतें क्यों आती हैं? इसकी बड़ी अच्छी मिसाल आपको देता हूँ, कोई आदमी घर बनाए, घर बनाने के बाद बिल्कुल घर बन गया, छत नहीं डाली उसने और बारिश होगी बड़ी तेज़ी के साथ, तो बारिश अंदर आएगी या नहीं आएगी? आई, पहुँच के जो रोक नहीं सकते, छत खुली हुई है। अच्छा, उसने क्या किया काम कि उसने क्या भाई छत बनाओ, तब उसने पूरी छत नहीं बनाई बल्कि आधी छत बना ली, तो बारिश आएगी या नहीं आएगी? फिर भी आएगी, लेकिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, आधी आएगी। उसने वे भी नहीं रोकी, उसने अब क्या करें, फिर उसने छत पूरी कर दी, लेकिन अभी सुराख बाकी है उसके अंदर छत के अंदर, फिर बारिश हुई, पानी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सुराख बाकी है, और अगर सारे सुराख बंद कर दिए, मुकम्मल छत कर ली, तो फिर बारिश आएगी, मकान बच जाएगा। तो वजह यह है भाई कि हम नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन छत मुकम्मल नहीं है, उधर सुराख रखे हुए हमने, नमाज तो पढ़ ली, जिक्र भी कर लिया, कुरान की तिलावत भी कर ली, लेकिन क्या है कि उसके बाद क्या करते हैं, फिर भी नाफरमानी करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बैठे हैं अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अल्लाह की रहमतें आएंगी इस पर, और जैसे जिक्र से फारिग होंगे नाफरमानी की, तो फिर बारिश टपकना शुरू हो जाती है, फिर मुसीबतें आनी शुरू हो जाती है। तो ये तरीका नहीं, ये वजह है इसकी। अगर मुकम्मल तौर पर इससे बचना चाहते हो, आफी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, दुनिया आखिर को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसका इलाज क्या है, मुकम्मल तौर पर अल्लाह की नाफरमानी, बंद कर दिया। शिकायत किसी से करने की जरूरत ही नहीं है, कि अल्लाह ताला ये काम नहीं हो रहा, अल्लाह ताला वो नहीं हो रहा, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं तो फलां भी कर रहा हूँ, मैं तो दुआएं भी करता हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, तो उसके साथ क्या मैं गुनाह भी करता हूँ? अब ये देख लें गुनाह भी साथ हो जाते हैं। तो इसी वजह नहीं, इसकी अल्लाह ताला ने देंगे इसे ऐत में इलाज ही बताया। या फोन कसीरा कि भाई तुम मुझसे माफ़ी मांग लो जो गुनाह तुमने किए हैं, या फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा चाहे कितने गुनाह हों, माफ़ी मांगो मुझसे। साथ ही कह रहा अल्लाह पाक या फोन ना कसीरा कितने गुनाह तुम्हारे होंगे, मांगो माफ़ी, सबको माफ़ कर दूंगा, मुकम्मल तौर पर सील्ड कर दूंगा, कहीं से भी कतरा मुसीबत का आने ही नहीं दूंगा। कितनी बड़ी अल्लाह पाक गारंटी दे रहे हैं। कोई बीमारी हो, किसी किसी मुसीबत हो, कोई बेबरकती, सारी की सारी जो बनती है वो इसी से बनती है। एक आपने एक काम करें, देखें एक दफा दुरुस्त पढ़े, एक दफा दुरुस्त पढ़े, क्या होगा? कितनी देर लगती है? सेकंड भी नहीं लगता। और अल्लाह पाक ने छोटे से छोटा दुरुद, वो भी दुरुद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुकम्मल दुरुद है। ये क्या लेके आएगा, क्या खींचेगा दुरुद, क्या चीज़ होगी? अल्लाह हो, अल्लाह उसके फरिश्ते उस इंसान पर 70 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। कितनी? अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से। तुम मुझे बताएं, एक रहमत अल्लाह की तो काफ़ी है, एक रहमत, जो रहमत आएगी उसमें क्या इनाम होंगे अल्लाह पाक को? क्या कोई मुसीबत रह सकती जहाँ अल्लाह ताला की रहमत आज इंसान पर? कितना खींची नेकी जरूर पड़ा आपने, उस नेकी ने किसको खींचा? अल्लाह की रहमत को खींच लिया, अल्लाह की बरसात। यहाँ आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो ये क्या है? अल्लाह की रहमत को खींच रहे हैं, अल्लाह ने आराम भी किया है। जब जिक्र के लिए लोग जमा होते हैं तो क्या होता है, जमीन से आसमान तक फरिश्ते फरिश्ते होते हैं। इस वक्त जमीन से आसमान तक पैक्ड होती है, फरिश्ते ऐलान हो रहा होता है, मामूली चीज़ तो नहीं है। अब बताएं, अब कोई फरिश्ता आएगा तो कितनी रहमतें लेकर आएगा, कितनी बरकतें लेकर आएगा, कितने इनाम लेकर आएगा, किस कदर लेके आएगा चीज़ें, कितनी कमाई कर लेंगे हम लोग थोड़ी सी देर के अंदर। हर चीज़ अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा। होगा क्या मसला? यहाँ तो हमने जिक्र कर लिया, जरूर पढ़ लिया, बाहर निकले, घर पहुंचे, फिर हमने सुराख खोल लिया, अब फिर सारा मामला खराब हो गया। अब फिर शिकायत करें, अब तो जिक्र भी करके हैं और फायदे नहीं हुआ। अल्लाह हुआ, उन लोगों से पूछें जो अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करके जाते हैं और फिर अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करते, उनसे पूछें उनकी बरकतों का क्या हिसाब होता है, उन पर रहमतें अल्लाह की कैसी बरसती हैं। वो तो जमा हो गई चीज़, यह आपने जो हमने कमाया ये तो जमा हो गया अल्लाह की किताब के अंदर, इतने इसने कमा लिया। जिक्र की बरकतें, यानी एक एक लफ्ज के, फिर उन लफ्ज़ों का हम अभी क्या पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हसबुनल्लाह ने मिले कुरान है या नहीं, लाइल तस्म कुरान है या नहीं, याहियु यकीम कुरान है या नहीं, सारे कलमात कुरान, सारे इसम आज़म है, सारे इसम आज़म है। तो इनकी बरकत का आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कुरान की? कुरान का तो एक लफ्ज, एक हर्फ, कुरान का हर हर्फ जो है वो क्या है, नूर है। हर हर्फ, हर हर्फ नूर है। मजमा तो आप छोड़ें, एक बुजुर्ग थे हमारे अकाबरीन के अंदर, तो वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, यानी उन्हें कुछ पढ़ा नहीं आता था, बिल्कुल नहीं जानते थे, अल्लाह वाले थे, बड़े नेक बुजुर्ग थे, कुछ नहीं आता था, बस ये जो जरूरत की आयत थी तो वो थोड़ी बड़ी याद थी। नहीं होता क्या था, उलमा कराम सब हैरान होते थे, कोई उनके सामने कुरान पढ़ता तो पता था ये कुरान है, कोई हदीस पढ़ता तो पता था ये हदीस है, और किसी बुजुर्ग का कौल होता तो पता था ये बुजुर्ग का कौल है। किसी ने पूछा, हजरत आप ये कैसे करते हैं, ये आप कैसे बता देते हैं? कहने, ये तो बहुत आसान बात है, कुरान का जो नूर है, हर हर्फ नूर है, और जिस वक्त कुरान पढ़ा जाता है तो उसका नूर में नजर आ जाता है, और कुरान के नूर के बाद हदीस, हदीस का नूर से कम है तो पता चल जाता है हदीस है, कुरान का नूर के बराबर तो हदीस का नूर नहीं है, उससे कम है तो पता चलता है हदीस, हदीस पढ़ने तो बाकी इंसानों का कलाम उस पर तो कितना नूर होते ही नहीं, तो मैं तशीश कर लेता हूँ, बता देता हूँ ये इतना दूर। तो अभी हम ये कलमात पढ़ेंगे, मुझे बताएं, नूर और नूर हो जाएगा आदमी, ना हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यानी कैसे कैसे कलमात जिक्र है ना सारा, कितना कमा के जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कितनी नेकियों को हम खींच के जाएंगे। तो मेरे भाई इसको जाया नहीं करना चाहिए, कितनी बुरी बात है। अपने नफ्स से ऊपर आकर, सिर्फ नफ्स, ख्वाहिशात, दुनिया कर, कितनी कमाई को हम जाया कर। एक तो वो है बेचारे जिनको मौका नहीं मिलता, ये जमात बैठी अल्लाह ने इनको मौका दे दिया, कितना बड़ा इनाम कर दिया। तो कल हमारी पकड़ ज्यादा होगी, हमारी पकड़ जो है वो ज्यादा होगी कि तुझे मैं बचाना चाहता था दोजख की आग से, जहन्नुम की आग से बचाना चाहता था। उस मजलिस में मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया, मैंने अपना नाम तुम्हें इसलिए सिखाया, कुरान मैंने इसलिए सिखाया, जिक्र मैंने इसलिए किया, हाफिज तुम इसलिए बनाया, आलिम इसलिए बनाया। ये सब अल्लाह ही करते हैं ना, अल्लाह ही करते हैं। सीनों में कुरान हमने तुम्हारे महफूज किया। तो इतनी चीजें इंसान ने अता फरमाई, यानी एक सिजदा भी कोई कम चीज तो नहीं है ना भाई, एक सिजदा मामूली चीज है। तो एक सिजदे की इंसान तौफीक तब हो जाए लग तब से, तो कितनी रहमतें, फरिश्ते आते हैं रहमत लेकर आते हैं, बरकतें लेकर आते हैं। तो इसी तरह जो है जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो क्या लेकर आती है, जिन्नात, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां। यानी इतना कदर लोग परेशान होते हैं कि हजरत सलेम हमारे घर हैं, सही रात में बच्चे सोते नहीं है, परेशानी है, और कोई पकड़ता है रात को, कुछ झगड़ता है, कुछ ये करता है, किसी के अंदर कुछ होता है, किसी के अंदर कुछ होता है। लोग मिलते हैं कहते रहते हैं, उनको कौन समझे कि मेरे भाई अल्लाह पाक ने तो इतनी बड़ी चीज दी है, इतनी बड़ी चीज दी हमें, कि अगर हम उसको एक उस चीज को पकड़ लें कि अपने घर में कोई ऐसी चीज ना ही हो जो अल्लाह की नाफरमानी को जाहिर करती है। मजा नहीं किसी जिन की आ जाए, जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाए, उस जिनका ताल्लुक क्या, उस खबासत का ताल्लुक क्या, बुराई का ताल्लुक क्या, मुसीबतों का ताल्लुक क्या। कितनी अजीब बात है कि अल्लाह सुभान तआला ने हमें कुरान दिया है, इबादत दी है, अल्लाह का जिक्र दी है, और फिर घर के अंदर मुसीबतें और परेशानियों, कैसी बात है। सब ये मामला सारा ऐसा है कि नाफरमानी हम करते हैं, और छोटी नाफरमानी, ये तो हर चीज कोई भी बड़ा उसको बहुत छोटा समझते हैं, उसको बहुत छोटा समझते हैं कि नहीं ये यार सब एक लफ्ज हमारे पास है यार, सुनो सारी दुनिया कर रही है, हम भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे भाइयों, खास तौर पे मैं अपने आप को आप हजरात से ये जरूर बात करूंगा कि अल्लाह ताला ने जब इतना बड़ा इनाम हमें दिया है, इतनी बड़ी तौफीक देता है, मसलों पर चढ़ा देता है, कुरान पढ़ा देता है, हिफ्ज करा देता है, अल्लाह के वास्ते इन नेमतों की कदर करो। तसव्वुर में ना करे इंसान की, जान जाने के बाद कोई गुनाह करे आदमी, अल्लाह की नाफरमानी करे, जिक्र के बाद, नमाजों के बाद, कुरान के बाद, ये तो खजाने हैं, इनको जमा कर लो आखिरत के लिए। ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह नूर निकलेंगे कब्र के अंदर के, इंसान हैरान हो जाएगा देख के, कुरान का नूर, जिक्र का नूर, इबादत का नूर, कैसे कैसे इंसान, तहज्जुद भी आप पढ़ते हैं, जिक्र भी आप करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हम करते हैं, लेकिन किस तरह जाया कर देते हैं। नाफरमानी जो अल्लाह ताला की है इंसान को बर्बाद करती है। हमारे 99% जो परेशानी को सब बनता है, 100% बल्कि कुरान के हिसाब से, वो क्या है, अमा साहब को मुसीबत अभी मैं कस बताई थी, कुछ तुमने खुद कमाई है, अपने हाथ से तुमने गुनाह कमाया है, या फुन कसीब। बस अभी वक्त अल्लाह ताला कहता है तुम वादा कर लो अल्लाह ताला से कि भाई हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में गुनाह नहीं आने देंगे, किसी मजबूरी को दखल नहीं देंगे। मजबूरी हम क्या करते हैं, खुद अपनी मजबूरी से अपने ही गला काट रहे हैं, ये नहीं पता कि कल हम खुद कहेंगे कि मजबूर थे, तो मजबूर होकर हम जहन्नुम में जा रहे हैं, मजबूरी कैसी, जन्नत में जाने की मजबूरी है। अल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत, हमें तो जन्नत में भेजना चाहते हैं, हम कहते हैं मजबूरी, हम जन्नत में ही जाना चाहते हैं, हमें तो जहन्नुम में जाने दें। ताज्जुब की बात है, ये दुनिया आरसी चीज़ है, मौत हकीकी चीज़ है। बाज़ दफ़ा इंसान बातें सुनता है मरने वालों की, तो आदमी हैरान हो जाता है कैसी कैसी मौतें अल्लाह पाक इंसान को देते हैं। भैया हमारे जानने वाले थे, इंडिया में इंतकाल हुआ, तबर्रुक अर्ज़ कर रहा हूँ कि दिमाग में वो इस वक्त उनकी मौत जो है, मेरे अभी कल इंतकाल हुआ उनका, काजी साहब ने मुझे बताया, मुलाकात रहती थी, इंडिया से आते थे, तो मौलाना बादशाह नाम था उनका, बच्चियों को मदरसा था, 50 साल उन्होंने कुरान पढ़ा है। मैं कुरान का नूर बता रहा हूँ आपको, नहीं कुरान ऐसा पढ़ाया उन्होंने कि नाफरमानी नहीं की, इसके बाद नाफरमानी नहीं की होगी बिल्कुल। तो अब मैं बताता हूँ नूर देखे उनका क्या था। मैं देखा था बीमार थे बेचारे, आते थे तो बड़े नफीस अच्छे आदमी थे, हमारे जिक्र में बैठते थे। तो आज उनका जहन में तो मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एकदम ख्याल आया। ये बता रहा हूँ आपको कि नूर क्या काम करती है, जिसे हम जाय कर रहे हैं, किस तरह जाय कर रहे हैं इनाम। जो मैं इसी मजलिस की बता रहा हूँ कि कितना अल्लाह इनाम दे रहा है, जाय कर देंगे जाके बस थोड़ी सी गुनाह करके ख़त्म कर देंगे, समझ लीजिए सारा रंग ख़त्म कर देंगे, सारा नूर ख़त्म कर देंगे। चाहते घर में बैठेंगे तमाशे लगा देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों से शैतान हमें बहलाएगा, करलाएगा, करवाएगा कि इंसान से हर नाफरमानी वो है कि जो नबी करीम ससम जो तरीका लेकर आए उस तरीके के खिलाफ, जिसको शरीयत कहते हैं, हम जाके काम किया वो ख़त्म हो गया मामला, ख़त्म। अब ये है भाई, देख लें नफ्स से लड़ सकते हैं अपने तो वो इंसान कामयाब है, जो नफ्स नहीं लड़ सकता वो नाकाम है। हमें बताता हूँ हज़रत मौलाना अब्बास साहब शेर नाम था, उमरे पे गए जैसे आज कल लोग जा रहे हैं, आज ही की बात बता रहा हूँ, कल इंतकाल होगा उनको, माशाल्लाह अल्लाह ने उनको क्या कराया, उमरा कराया, तवाफ किया, उमरा किया। और उसके बाद मदीना गए, मदीना मुनव्वरा गए, हाजिरी दी रोजे पर। अब आप बताएं कि मक्के की फिजाओं में सारे गुनाह साफ, मदीने में जाके क्या कुछ मिला गया वो आप सोच लें खुद, जो जो कुछ होगा साफ, यानी आखिरी रंग आखिरी जो उनकी वो हो रहा है रंग पे जो चढ़ रहा है वो भी इंतहा दर्जे का, मामूली चीज़ नहीं है ये, बहुत अजीब चीज़ है। उसके बाद जाने लगे वापस बेचारे, जिस तरह मुझे बताया कारी साहब ने कि जाने लगे तो जद्दा पहुंचे, जद्दा उनकी तबीयत खराब हो गई, तो हमें एम्बुलेंस बुलाओ। तो ये मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का, मैंने बहुत सी मौतें देखी हैं जिद्दा के अंदर, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैंने खुद देखे अपने जानवर कि उनको कहते हैं यहीं दफन कर दें हम नान, वो कहते रहते हैं भागने के, मक्का भेजो मदीना भेजो, नहीं जाने देते वो, उनको तो सूरी नहीं है, कहते हैं यहाँ भी तो कब्रिस्तान है यहाँ दफन करो उसको। मैं खुद मैं जानता हूँ मेरे कई दोस्तों का ऐसा मामला हुआ है, हालांकि पुराने रहने वाले और जानने वाले अरबी जानते हैं उनको नहीं जाने देते, कहते हैं नहीं नहीं यहाँ ये भी तो कब्रिस्तान है अल्लाह तो हर जगह। तो अब उनकी देखें किस्मत, कुरान की बता रहा हूँ आपको, ये जिक्र ये कुरान जी क्या इसका नूर बता रहा हूँ, नूर कब काम आता है, लेकिन कब बनेगा ये नूर, जब हम अल्लाह की ना आँखों को रोकेंगे, जबान को रोकेंगे, हाथ को रोकेंगे, निगाहों को रोकेंगे, पूरी जिंदगी को तबाह सुनत पर गुजारेंगे। ऐसे कितनी जिंदगी है भाई, बहुत थोड़ी जिंदगी है, अब कितनी थे वो चंद सालों की बात है, उनको देखता था यहाँ आते थे बेचारे चंदे के चक्कर में, टेलीफोन में सलाम दुआ होती रहती थी, कार से बताते रहते, एक दो मुलाकातें हुई थी। अब मैं वो सोच लूँ अगर कि उस वक्त क्या पता था कि भाई इतनी जिंदगी इतनी रहेगी आदमी की, आपको क्या पता कितनी जिंदगी है, आँख बंद होगा तो हम कहेंगे 60 साल हम रह के हैं, 80 साल हम दुनिया में रहें, ऐसा लगेगा जैसे 5 मिनट है बस। इसको ऐसा समझ रहे, मैं आपको कहूँगा 5 मिनट आपने खामोश रहना है, तो इस जिंदगी को पूरा ऐसे समझ रहे कि ये 5 मिनट हमने कोई गुनाह नहीं करना, ये सिर्फ 5 मिनट ही समझें इसको, अल्लाह की नाफरमानी समझ फिर आसान हो जाएगा काम। इसको इतना ना बढ़ाया, ओ इतनी जिंदगी पड़ी है, 60 साल पढ़े 80 साल पढ़े, ये ना शुमार करो इसको, ऐसा समझो ये 5 मिनट ही है भाई, 5 मिनट में कितनी देर लगती है यार, खामोश जाओ उसके बाद जन्नत और बहारें मिलेंगी। तो वो तो 5 मिनट लगते हैं मौलाना साहब को मुझे, उसके बाद जिद्दा हुए तो अब अंदाज़ा लगाए, डिटेल तो मुझे पता नहीं किस तरह, उनके कौन जानने वाला होगा बेचारों का, वहाँ किसकी सिफारिश होगी क्या पता होगा उनका, वो कहते हैं कोई इनको मक्का भेजो, अल्लाह मक्के इलाज के, हालांकि सब कुछ जिद्दा में सब कुछ। अब क्या है कि जनाब वो मक्के चले गए, उनको अपने कमरे जा होटलों के कमरे में बैठे, तो अब देखें अंदाज़ा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लोग मौजूद थे। अब उनकी मौत अल्लाह ने बुलाया उनको, ये सारा एहतमाम था मौलाना साहब का, यह एहतमाम किया था अल्लाह पाक ने कि पहले वीज़ा लगवाया, उमरा करवाया, मदीने भेजा, जिद्दे से फिर वापस भेजा जहाज से, सुभानअल्लाह, जिद्दे से फिर वापस भेजा कि फिर जा तुम मक्के। अब वहाँ बिस्तर में लेटे बीमार हंसता है या रोता है, चीख मारता है या कराहत करता है, जब बीमारी हार्ट हो कुछ हो तो आदमी शोर मचाता है, चीख मारता है, अल्लाह हो कुरबान जाऊँ ऐसी मौत की। मौलाना हंस रहे हैं और कलमा शाद जोर से पढ़ रहे हैं और अल्लाह के सुपुर्द अपनी जान अता कर रहे हैं। आप बताएं कैसी मौत है, देख रहे हैं हम भी अगर ऐसे काम कर लें, हम जनाजा कहाँ हुआ, अल्लाह अब अंदाजे लगे कितना बड़ा जनाजा हुआ होगा हरम शरीफ के अंदर, और आखिर फिर कहाँ गए होंगे, जन्नतुल मौला के अंदर दफन हो गए, जहाँ से खतीजे हैं, कैसे कैसे सहाबा मौजूद हैं। को सोच सकते थे मौलाना कि वो ये इनाम सोच सकते थे? यही वजह है आज आप जिक्र कर रहे हैं, आपको पता नहीं इसका कितना बड़ा इनाम है। हम सोच सकते हैं कि इस जिक्र के बाद अल्लाह कितने दर्जात इंसान को देता है, क्या जन्नतें खुलती हैं अल्लाह के जिक्र की मजलिस के बाद, कितने बड़ा इनाम अल्लाह देता है। हम सोच सकते हैं कि कुरान पढ़ने के बाद, कुरान की तिलावत क्या इंसान के दरवाजे खोल देती है, हर लफ्ज नूर बन जाता है। तो उन्होंने यही नूर था मौलाना का, मैं समझता हूँ कि 50 साल जो उन्होंने तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ाए बच्चियों को और बच्चों को, और क्या किया बेचारों ने, जो बच्चों बच्चियों को कुरान पढ़ाया उन्होंने तकवे के साथ पढ़ाया, ना फरमानी नज़दीक नहीं आने दी, तो सारा नूर जमा हो रहा था उनका, अल्लाह इतना नूर बन गया कि इस काबिल ही नहीं कि किसी दुनिया के किसी कब्रिस्तान में रखा जाए, इसको तो बेहतर वहां से हरम शरीफ से निकालकर इसको जन्नत मौला में रखा जाए। चंद दिन की बात है मेरे दोस्तों, खास तौर पर एक तो वो है बेचारे जिनको तौफीक नहीं हो रही, बेचारे नमाज नहीं पढ़े, उनको भी हम नसीहत करें अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जाएं, एक तो वो इंसान है अल्लाह ताला उनको भी सबको तौफीक दे, नमाजें पढ़ें, इबादत करें, एक तो हम लोग हैं सुबह भी जिक्र कर रहे हैं, शाम भी जिक्र कर रहे हैं, और फलां भी जगह भी जिक्र रहे हैं, ये कि इसको तब इसको तमाशा ना समझें, ये तो अल्लाह की रहमतों की बारिश समझें इसको, अल्लाह की रहमत की बारिशें जो हम इसको कर रहे हैं नूर नूर, इसको तमाशा ना समझें। हम तलावत कुरान कर रहे हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, मेरे भाई यही आयत आप पढ़ें, इसका स्वाब कितना होगा, 10 गुना होगा, यानी एक लफ्ज़ एक नेकी मिलती है ना, तो अल्लाह की वजह से एक नेकी 10 बन जाती है, नहीं बनती। ये कुरान के एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते अलिफ लाम मीम, यही आप अगर सुने, यही आप अगर नमाज में पढ़ेंगे नफिल हो जो भी नफिल, तो उसका स्वाब कितना हो जाएगा, 100 गुना नेकी मिलती है, 100 इतनी नेकी अल्लाह ता फरमा दे, नेकी में आ कुल अल्लाह ही पढ़ लेते हैं, तो नासी पढ़ लेते हैं, कितनी नेकी अदा फरमा दी नमाज में, और जाने के बाद क्या किया, ना फरमाने करा दी शैतान, हाय हाय कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह के बंदो, इस ख्वाहिशात को थोड़ी देर काबू कर लो, मैं अपने आप से कहता हूँ, आप तो नेक बने, ये ख्वाहिशात जो हैं इनको थोड़ी देर के लिए काबू कर लो, और वादा कर लें, ये अफ़ुन कसीर, अल्लाह कहता है कि तुम उसे वादा करो मैं तुम्हारे पिछले खत्म कर दूंगा सारे, माफी तुम मांगो माफ मैं करूंगा तुम, यानी पहले ही कह दिया याफू मैं तो माफ करूंगा, ये नहीं कहा कि माफी मांगो, यानी अल्लाह कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, इनाम भी दे रहे हैं, बताई बता रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। अब फिर रोना, आप समझ जाएं कि जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, बरकत नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, हमारे इसमें फला नहीं हो रहा, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारे नाफरमानी हो रही, हम ये नहीं हो रहा, सालों की वजह क्या है, माँ साहब को मुसीबत ये सब तुम्हारी क्या है कि तुमने अपने हाथों से किया है मामला, जिसकी वजह से सब रुकावटें आ रही, ये सारी रुकावटें जिंदगी की क्या है, हमारे गुनाह और नाफरमानी। अल्लाह से दुआ करें सच्चे दिल से, जिस अल्लाह पाक ने हमें अपने हबीब के सदके से ऐसी खूबसूरत रात में, ऐसे खूबसूरत महीने में हमें जिक्र के लिए भेजा है, अपने शौक से मोहब्बत से हम जिक्र में, अल्लाह ने ऐसी चीज़ पैदा की है, तो अल्लाह से वादा करें कि हम इसी तरह अल्लाह की नाफरमानियों से बचेंगे। कब तक ज़ाया करते रहेंगे इन चीज़ों, कुछ हो जाए कर नहीं करना गुनाह। आज हम अगर इस जिक्र को काबू कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं, यही एक मस्जिद हम आज ही से शुरू कर दें, अल्लाह ने कहा या फरक सीख, आज ही हम कह देंगे हम जी अल्लाह ताला माफ़ फरमा, बाकी सारी पिछली मस्जिदों को हमने ज़ाया कर दी है, आज हम तेरे से माफ़ी मांगते हैं कि तुम इंशाअल्लाह जाने के बाद हम गुनाहों पे तेरी नाफरमानी को पूरी कंट्रोल करेंगे, हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, तो अल्लाह ने वादा किया है या फरक, पर क्या होगा कसीर के साथ पता चलता है कि अल्लाह ताला इसको तो हम महफूज कर लेंगे, अल्लाह बहुत रहम करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, तो पिछली मस्जिद से भी जो जाय हुई है अल्लाह ताला उनको भी समझते बदले पेट देंगे। अब पता नहीं कल मौत आ जाए। नूर का मामला तो बता दिया आपको कि जिनके नूर जमा हो जाते हैं उनके, तो मैंने आपको मौत बता दी एक इंसान की। आम आदमी थे बेचारे, एक आम मदरसा चलाते थे, आम बच्चों को पढ़ाते थे हिंदुस्तान के अंदर, और कोई खास वजह नहीं थी उनकी, कुछ बीमार हो गए थे, आ भी नहीं सकते थे, कितना बड़ा मुकाम बताएं, अब इनके मुकाम बादशाह, किंगडम, सल्तनतें, मकानात, कोठियाँ, ज़मीनें सब ले आए आप, उस मौलाना बास के तो एक जर्रे के बराबर ही नहीं हो सकती। आज उनसे बोलें मौलाना कल बोला था मालूम क्या कुरान पढ़ रहे यार, कोई किसी काम पे लगो, अपनी फैक्ट्री चलाओ, ये करो, हजारों लोग कहते होंगे ये क्या बच्चों पढ़ाने, क्या लगता है ऐसे 50 पाउंड आप ले रहे हैं या 40 पाउंड ले रहे हैं, फला पाउंड ले रहे हैं, ये होता है ना कि तुमने ये काम करो फला करो, बच्चों को क्या कर दिया आपने यार, क्या मौलाना बना दिया, क्या कुरान पे लगा दिया, ये देखो जी फला डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये हो गया, ये होता है ना। लेकिन सुभान अल्लाह आप ये देखें क्या ले गया इंसान, अभी तो यहाँ क्या रश हो रहा है, रश तो हशर में होगा उनके ऊपर, हाँ वहां जब लोग हशर करेंगे ये किस तरह इंसान आ गया। तो आज भी हम तौबा कर लें अल्लाह ताला से, इन लाइन तो बनी हुई है, आपने तौबा भी की हुई है, जिक्र भी करते हैं माशाल्लाह, नमाज भी पढ़ते हैं, तौबा इसकी करनी है, हम इंशाल्लाह नाफरमानी नहीं होने देंगे, इस शीट को हमने बस ख़त्म ही कर देना, हमने नाफरमानी नहीं होते। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे और आप हज़रत को तौफीक।